तो आज के 10 जनवरी के 2012 के इस साल के पहले संध्या जागृति में आपका स्वागत है ना। पिछले साल में आपको 20 दिसंबर को मिला था, तो अभी मिल रहा हूँ। तो कुछ लोगों को पता है, कुछ लोगों को पता नहीं है। ये जो बरसाना नाम की जगह जानते हैं ना आप, नहीं जानते होंगे तो बता दूंगा मैं। बरसाना ये मथुरा ज़िले में आता है, और मथुरा ज़िले में, मथुरा में पहले भगवान का जन्म हुआ था, फिर वहाँ से वो गोकुल आए थे, तो वहाँ से कुछ यमुना के पार करते ही गोकुल आता है। पहले मथुरा है, बीच में यमुना है, यमुना पार करते ही गोकुल आता है। गोकुल के आगे 25 किलोमीटर वृंदावन है, और वृंदावन के आगे 40 किलोमीटर नंदगांव और बरसाना है। और ये नंदगांव बरसाना क्या है? नंदगांव भगवान कृष्ण का बाल्यपन का काल स्थल है, स्थान है। और जो बरसाना है वो राजा रानी का बाल्यपन का स्थान है, जहाँ पर वो अपने उम्र के 3 साल के उम्र में दोनों को लाया गया था। वहाँ पर जब जन्म हुआ था तो गोकुल में थे, और राजा रानी रावल में थी। रावल भी बहुत पास में है उसके, गोकुल के। राजा रानी जब जन्म उधर रावल में हुआ था, भगवान का जन्म मथुरा से होके उनको गोकुल में लाया गया था, और 3 साल के बाद में गोकुल से भगवान कृष्ण को नंदगांव में लेके गए, कृष्ण और बलराम को। और उसी उम्र में राजा रानी को रावल से बरसाना लेके गए, और रावल में, बरसाने में और नंदगांव में भगवान 10 साल तक रहे। बाद में मथुरा चले गए, मथुरा से द्वारका चले गए, वहाँ से हस्तिनापुर आए, फिर युद्ध हुआ कुरुक्षेत्र में, फिर लौट के गए ब्रजवासियों को मिलने के लिए। और राधा रानी वगैरह बरसाने में रही, 100 साल से भी अधिक भगवान से दूर रही वो। तो राधा रानी का गांव जो है बरसाना, उसको बरसाना इसलिए कहते हैं कि वहाँ पर 4 पर्वत की चोटियाँ हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी वहाँ पर पर्वत बने हैं, है ना। ब्रह्मा जी 4 मुख वाले हैं, उन्होंने भगवान की तपस्या की, और तपस्या करने के बाद भगवान ने दर्शन दिया और पूछा क्या चाहते हो। ब्रह्मा जी ने कहा कि आपके चरणों की रज चाहता हूँ, आपके आपके सखियों के और सखाओं के चरणों की रज मेरे सर पे चाहता हूँ। तो ब्रह्मा जी फिर बरसाने गए हैं, और बरसाने में वो पत्थर बने हैं, मतलब पर्वत बने हैं, तो 4 शीश है उनके, इसलिए 4 पर्वत की चोटियाँ हैं। तो वर स्यानु मतलब सुंदर पर्वत की चोटियाँ, इसका मतलब वर्ष्यानु यानी बरसाना। वृषभानुपुर, क्योंकि वृषभानु उनके पिताजी का नाम था और उसके राजा थे वो, इसलिए उनका नाम पड़ा वृषभानुपुर, वो भी बरसाने का और एक नाम है। बृहत स्यानु ये भी नाम है उसका, बहुत सुंदर पर्वत की चोटियाँ। और वृषभानुगृह यानी कि वृषभानु महाराज का घर, ये भी उसको कहा गया है। तो 4 पर्वत की चोटियाँ जो हैं, उसमें एक चोटी जो है वो राधा रानी का घर है, उसको कहते हैं भानुगढ़। भानुगढ़ यानी राधा रानी के पिताजी वृषभानु महाराज वहाँ रहते थे, उनका महल है वहाँ पर, अभी भी महल है वहाँ पर। वहाँ आज जहाँ पर उनका घर था वहाँ पर राधा रानी का मंदिर है। ये दूसरा चोटी है दानगढ़, तीसरा है मानगढ़, और चौथा है विलासगढ़। ऐसे भगवान के, राधा रानी के लीला के स्थली है। और ये भानुगढ़ जो है, यहाँ पर जो भगवान के विग्रह हैं उसका नाम है लाडिली लाल। लाडिली मतलब लाडली यानी कि राधा रानी, और लाल का मतलब है कृष्ण, नंदलाल, नंद के पुत्र। तो लाडिली लाल के वहाँ पर विग्रह हैं। और राधा रानी के गांव में बहुत ज़्यादा मशहूर क्या है, सबसे ज़्यादा बताओ, वर्ल्ड में फेमस क्या है उधर, बोलो। हाँ, होली का उत्सव, जो होली हम मनाते हैं ना यहाँ पर, उसका उगम वहाँ से हुआ है। और पूरे वर्ल्ड के अंदर बरसाने की होली बहुत फेमस है। और दूसरा बड़ा उत्सव होता है राधा अष्टमी का, जहाँ पर राधा रानी का जन्म जो है वो मनाते हैं। और तीसरा उत्सव है अक्षय तीज का, अभी आएगी अक्षय तृतीया, उस दिन राधा रानी नीचे आती हैं अपने मंदिर छोड़कर, और सब प्रकार के लोग उसकी पूजा करते हैं। इस प्रकार से राधा रानी का जो स्थान है वो सबको पता नहीं है। हाँ, आपको मथुरा मालूम है सबको ना, सबने मथुरा सुना होगा, वृंदावन भी सुना होगा आपने, लेकिन राधा रानी का स्थान जो है वो बहुत लोगों को कम मालूम है, क्योंकि राधा रानी जो है वो रहस्यमय व्यक्ति है। हाँ, कृष्ण को दुनिया भर में जानते हैं, राधा रानी को कुछ गिने चुने भक्त जानते हैं, क्योंकि राधा रानी वो रहस्यमय वो व्यक्ति है जिसकी कृपा से कृष्ण भगवान की कृपा प्राप्त हो जाती है। हम लोग कृष्ण का नाम जपते हैं ना, उसमें जो हरे बोलते हैं ना, हरे हरे कृष्ण, वो हरे जो है वो राधा रानी का नाम है, हरा उनका नाम है, जो भगवान का हृदय हर लेती है, भगवान का हृदय हर लेती है, इसलिए उसका नाम हरा है। उसको पुकारते हैं तो कहते हैं हरे हरे कृष्ण। तो सबसे पहले हम हरा को पुकारते हैं, हरे, फिर कृष्ण को पुकारते हैं, तब जाकर भगवान का ध्यान हमारी ओर आकर्षित हो सकता है। ये बहुत रहस्य की बात है, सबको पता नहीं है, इसलिए दुनिया भर में कैसे बोलते हैं श्री कृष्णम शरणम मम, श्री राम जय राम, लेकिन हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र को चैतन्य महाप्रभु ने सबको दिया। गौलोकेर प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन, श्री चैतन्य महाप्रभु ने ये महामंत्र सबके लिए दे दिया। और क्या दिखाया उसके अंदर, कि राधा रानी का नाम पुकारने से ही कृष्ण भगवान का ध्यान हमारी ओर आकर्षित हो सकता है। तो वो राधा रानी जो है वो भक्तों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि राधा रानी की कृपा जब होगी तब जाकर हम लोग भगवान की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हमारा कैंप हमने कहाँ लगाया है, बरसाने में लगाया है, क्योंकि हम जानते हैं वहाँ के लोगों की सेवा करेंगे तो राधा रानी प्रसन्न होगी, राधा रानी प्रसन्न होगी तो कृष्ण हमको आशीर्वाद देंगे, तो कृष्ण आशीर्वाद देंगे तो हमको भक्ति प्राप्त होगी, भक्ति प्राप्त होगी तो हम भगवान के धाम में जाकर उनकी सेवा कर सकते हैं। तो ये जो मंदिर है ये बहुत ही सुंदर मंदिर है, पहाड़ के ऊपर मंदिर है, बहुत बहुत ही सुंदर मंदिर है। और आज भी वहाँ पर मैं जानता हूँ कई लोग जो है चार चार पाँच पाँच किलोमीटर दूर गांव से चलकर सवेरे 5 बजे की मंगल आरती में पहुँचते हैं। हाँ, घर से 4 बजे निकलते हैं तो 5 बजे वहाँ पहुँच जाते हैं ठंड के अंदर भी, और मंगल आरती में खड़े रहते हैं। बहुत सिंपल लोग रहते हैं वहाँ पर, एकदम सीधे साधे, उनके लिए जो भी कुछ है इतनी श्रद्धा है उनके मन में कि वो कहते हैं राधा रानी की कृपा के बिना कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए वहाँ पर जाएंगे आप, वृंदावन में जाएंगे, मथुरा में जाएंगे, नंदगांव में जाएंगे, बरसाने में जाएंगे, तो कोई जय श्री कृष्ण नहीं बोलता है, सब लोग क्या बोलते हैं जय श्री राधे, राधे राधे, इतना ही बोलते हैं राधे राधे। हम लोग कैसे बोलते हैं हरि बोल यहाँ पर बॉम्बे में, तो वैसे वहाँ पर सब लोग हरि बोल नहीं बोलते हैं, राधे राधे बोलते हैं, क्योंकि वो जानते हैं राधे राधे बोलने से ही कृष्ण भगवान जो है उस व्यक्ति के पीछे पीछे भाग भाग के आते हैं। हाँ, राधा के पीछे कृष्ण स्वयं तेरे द्वार पे दौड़े आएंगे, तू सिमरन कर राधे राधे तेरे कष्ट सभी मिट जाएंगे। ये सत्य है, ये रहस्य की बात है। हाँ, क्योंकि कृष्ण के पीछे भी कोई स्वामी नहीं है जो कृष्ण को भी कंट्रोल में रखती है, प्रेम के कारण वो राधा रानी है। तो ये राधा रानी के मंदिर की एक मैं आपको अद्भुत कहानी बताऊंगा आप आज। ये राधा रानी का मंदिर जो है बहुत सैकड़ों सालों से वहाँ पर उपस्थित है, और वहाँ पर लाड़ीली लाल की जो विग्रह है ये नारायण भट्ट गोस्वामी ने वहाँ पर प्रकट किए थे। नारायण भट्ट गोस्वामी जो है वो नारद मुनि के अवतार माने जाते हैं, और उनका जन्म जो है वो ऊंचा गांव में हुआ था, ऊंचे गांव में रहते थे। ऊंचा गांव जो है वो राधा रानी के जो फ्रेंड है ललिता देवी उसका गांव है, ऊंचा गांव, उच्च ग्राम कहते हैं उसको, वो भी पहाड़ पर है, उसकी भी टेकड़ी है, उस टेकड़ी पर ललिता देवी का मंदिर है। तो नारायण भट्ट गोस्वामी को स्वप्न आया था कि इस पहाड़ के ऊपर मैं अंदर हूँ, मुझे निकालो। तो नारायण भट्ट गोस्वामी ने भक्तों को साथ में लेकर खुदाई करके वहाँ से छोटे छोटे राधा और कृष्ण की मूर्तियाँ प्रकट की थी और मंदिर में स्थापन किया था, तभी से उनको लाडली लाल नाम से जानते हैं। और सब भक्तजन जो है होली, राधाष्टमी, अक्षय तृतीया, ये सब उत्सव में आकर उनका उत्सव मनाते हैं और राधा रानी को बहुत प्रेम करते हैं। तो जब औरंगजेब का समय था तभी मुग़ल लोग यहाँ से वहाँ अटैक करते थे ना, हिंदुओं के मंदिर पर, तो उस समय पर राजा रानी के मंदिर पर अटैक करने के लिए वहाँ पर शत्रु लोग आए। तो ये जानकारी जब मालूम पड़ी कि राजा रानी के मंदिर में हमला हो रहा है तो मूर्तियों को भी नाश करने का प्रयत्न करेंगे, तो उन्होंने क्या किया, राजा रानी का विग्रह लेके वो स्योपुर चले गए। स्योपुर, स्योपुर नाम की एक जगह है, वहाँ पर थोड़ा 50 किलोमीटर दूर है, आगे राजस्थान में है वो। तो स्योपुर का राजा तो था, वो भगवान का बड़ा भक्त था, राजा रानी का बड़ा भक्त था। उसने सब लोगों को आमंत्रण दिया कि आप आइए हमारे दरबार में आके, राजा रानी को वहाँ पर रखिए आप। तो राजा रानी को वहाँ पर रखा गया, तो राजा रानी के जगह पर विशाखा देवी की मूर्ति को रखा गया। विशाखा देवी भी राजा रानी की एक फ्रेंड है, उसके दो मेन फ्रेंड है, ललिता और विशाखा। तो विशाखा का गांव जो है वो अंजनपुर है। तो राजा रानी की जगह पर विशाखा देवी को लाडिली का स्थान देकर वहाँ रखा गया। खैर, तो वो मूर्ति वहाँ पर चली गई, उनकी वहाँ सेवा आरंभ हो गई। साथ साथ में यहाँ के एक बड़े बुजुर्ग पुजारी भी चले गए वहाँ पर राजा रानी की सेवा करने के लिए। तो यहाँ पर क्या हुआ, असल में अटैक हो गया, और जब अटैक हो गया तो राजा रानी का पूरा पहाड़ जो है वो शत्रु के सैनिक से भर गया। जगह जगह सैनिक दिखाई पड़े शत्रु के। तो अभी राजा रानी का मंदिर गिराने वाले थे, तो अचानक विशाखा देवी की दया से हर एक सैनिक के सामने अपना एक सैनिक खड़ा हो गया, जो उनमें से नहीं था, नया सैनिक, हर एक के सामने एक सैनिक खड़ा हो गया। इतने सैनिक विशाखा देवी ने उत्पन्न कर दिए, और युद्ध शुरू हुआ। अचानक वहाँ से राजस्थान से बच्चू सिंह नाम का राजा था, वो अपने सैनिक को लेके आया। तब तक ये सारे सैनिकों ने, जो राजा रानी के दोस्त ने प्रकट किए थे विशाखा देवी ने, वो सब मेवों को ख़त्म कर दिया शत्रुओं को। तो विशाखा देवी का नाम पड़ा विजय लाडली जी। तो विजय लाडली जी इसलिए रखा गया क्योंकि उनकी कृपा से वहाँ पर विजय हुआ। तब तक जो राजा रानी थी वो लाडली जी वो स्योपुर में थी। तो उसके बाद बहुत साल गए, विजय लाडली जी के ने विजय भी प्राप्त करा दिया, शत्रु का विनाश हो गया, राजा रानी का मंदिर बच गया। तो फिर सब लोग बरसाने के गए स्योपुर के राजा के पास, और उन्हें बोला कि अभी संकट टल गया है, अभी राजा रानी को अपने धाम में वापस जाने दो, हम लोग लेने आए हैं। तब तक राजा का राजा रानी के ऊपर बहुत आसक्ति उत्पन्न हो गया था, बहुत प्रेम हो गया था। तो राजा ने उनको मना कर दिया, उन्होंने कहा कि राजा रानी को हम आपके पास आने को नहीं देंगे। तो सब लोग लौट के आए, राजा के आगे कौन बोलेगा, राजा तो बहुत पावरफुल होता है। तो एक दिन राजा रानी स्वयं, वो जो पुजारी गए थे यहाँ से, उनको बोली कि मुझे बरसाने ले चलो। तो पुजारी बहुत बूढ़े थे, बोलते आप जानते नहीं हैं कि राजा को पता चला तो कितना दंड करेगा वो। लेकिन जैसे ही बरसाने के लोग आकर वहाँ पूछ के चले गए ना कि राजा रानी का मूर्ति हमको चाहिए, तब से राजा ने मंदिर में पहरा लगा दिया। और क्या इंतज़ाम किया कि दिन भर पहरा रहेगा, और रात को सब मंदिर को ताला लगा के पुजारी जो है वो ताली जो है चाबी वो राजा के घर पे लाके हाथ में देगा, और फिर चला जाएगा। नेक्स्ट मॉर्निंग में चाबी आके लेके जाएगा, मंदिर खोलेगा, दिन भर सेवा करेगा और पहरा जो है वो लगा रहेगा, ऐसा इंतज़ाम किया। और इस कड़क पहरे के बीच में राजा रानी स्वयं मूर्ति से, वो पुजारी से बोलती है कि हमको बरसाने ले चलो, अभी हमको बरसाने वापस जाने का दिल कर रहा है। अभी आप बोलेंगे राजा रानी की मूर्ति बोलते कैसी है, आप सबको पता होना चाहिए कि जब हमारी भक्ति बहुत शुद्ध हो जाती है और हम बड़े प्रामाणिक भक्त बनते हैं, तो जो विग्रह हम भगवान की मूर्ति की सेवा करते हैं वो विग्रह हमसे बात करते हैं। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, हाँ लोकनाथ गोस्वामी, इन सबके विग्रह थे, और वो उनसे बात करते थे, उनसे चर्चा करते थे, उनसे कहते थे हमको क्या खाने को चाहिए और क्या करना चाहिए, कौन आने वाला है, कैसे कैसे करना चाहिए, सब बात करते थे। तो राजा रानी स्वयं शुद्ध भक्ति होने के कारण उस पुजारी से बात करती है कि मुझे तू अभी बरसाने ले चल। तो पुजारी कहते हैं कि बहुत बूढ़ा हूँ, राजा को पता चलेगा तो दंड करेगा मुझे, मैं भाग भी सकता नहीं हूँ। तो राजा रानी कहती हैं तू क्यों डरता है, जो मैं जो बोलूँगी वैसे करते जाओ, आपकी रक्षा मैं करूँगा, आप चिंता मत करो। तो इस तरह से हमको क्या बताते हैं वो, क्या समझते हैं उससे, कि हमको भगवान के इच्छा पर कभी शंका नहीं करनी चाहिए। भगवान की इच्छा अगर हमको कठिन भी लगती है, बहुत मुश्किल लगती है, फिर भी जब भगवान हमको आदेश देते हैं, गुरु महाराज आदेश देते हैं, तो उसको पालन करने में डरना नहीं चाहिए। हाँ, और नींद आ गई तो खड़ा होना चाहिए, कृष्णा मामा नींद आ गई तो खड़े होना चाहिए, सोना नहीं चाहिए, कथा चल रही भगवान की। हाँ, सच में बोल रहा हूँ मैं, नींद आने तो खड़ा होना चाहिए तुरंत, कथा में खड़े होकर कथा सुनना चाहिए। तो राजा रानी उनको बोलते हैं कि जैसा मैं बोलूँगी वैसा करो, और कुछ नहीं होगा, मैं आपकी रक्षा करूँगी। तो फिर राजा रानी बताती है कि रात को जब तुम दरवाज़ा बंद करके जाते हो ना, तो सब दरवाजे बंद करना, लेकिन ऊपर की खिड़की की जो कड़ी है वो खोल देना, और वो खुली रख के सब दरवाजे बंद करना, ताला लगाना, और ताला जाके राजा को देना, और सब कुछ सो जाने के बाद में पहरेदार भी सो जाएंगे, अभी ताला लगाने के बाद कोई जगता नहीं है, रात को वॉचमैन होता है ना कभी, सब लोग अपना बिस्तरा पट के सो जाते हैं, बैठे बैठे या सोते सोते। तब रात में बीच में आप 12 बजे उठना और खिड़की से कूदना, जो खिड़की खुली रखी है उसको खोल के आप अंदर कूद लगाना, और मुझे सब जेवर उतार लेना मेरे, और मुझे उठा के खिड़की से भाग जाना, और रात ही रात में बहुत सारा अंतर भाग जाना। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, सब दरवाजे बंद करता है, शयन आरती करता है, आखिर की आरती भी ख़त्म हो जाती है, और वो आखिर की आरती समाप्त होने के बाद में वो खिड़की खुली रखता है, मतलब खिड़की कड़ी लगाता नहीं है, खाली खिड़की बंद कर देता है और कड़ी निकाल लेता है, सब दरवाजे लॉक करता है और चाबी जाकर राजा के पास पहुंचा देता है। और बीच रात में उठता है बूढ़ा आदमी, खिड़की धक्का मार के खोल लेता है, अंदर कूदता है, राधा रानी की मूर्ति गोद में लेता है, छाती में लगाता है, ऐसे सब अलंकार उतार देता है और उस मूर्ति को लेके भाग जाता है। ऐसे लिखा गया है कि उस दिन उस बूढ़े पुजारी के पैर में इतना शक्ति आ गया था कि वो मानो हवा में ही उड़ रहा था, इतना तेज से वो भाग सकता था। वो दिन जिसको चलने को भी दिक्कत थी, उस दिन राधा रानी की इच्छा और आज्ञा के अनुसार वो इतना जोर से भागता है कि उसको भी आश्चर्य हो रहा है कि मैं ऐसे जोर से कैसे भाग रहा हूँ, लेकिन मानो इतनी शक्ति आ रही है उसके अंदर कि वो हवा में ही उड़ के भाग रहा है, इतना तेज भाग रहा था वो। बहुत देर तक रात में ठंडी में अंधेरे में भागता रहा, सुबह तक किसको पता नहीं चला। सुबह जब चाबी लेने को पुजारी नहीं आया तो राजा ने वेट किया कि भाई अभी आएगा, अभी आएगा, बहुत देर हो गई, दिन ऊपर आया तो राजा ने फिर सैनिकों को भेज दिया आदेश कर कि देखो क्या हो गया, अभी तो पुजारी बीमार है कि सो गया है कि क्या हो गया पुजारी को। तो चाबी देखे सैनिक लोग दरवाजा खोलते हैं, देखते हैं अंदर से राधा रानी का जो मूर्ति है वो गायब है, और पुजारी भी गायब है, उसके घर पर भी नहीं है और मंदिर में भी नहीं है और विग्रह भी नहीं है। तो सबको समझ में आता है कि वो विग्रह को लेके भाग गया है। तो सब लोग, राजा बोलते हैं तुरंत चले जाओ घोड़े पर बैठ के, और घोड़े पर बैठ के वो घोड़े को लगाम लगाकर जोरदार से भागते हैं। तब तक ये चंबल की खोर, चंबल का है ना वो खाई है ना, बहुत फेमस है वो डाकुओं के लिए, तो वहाँ तक ये पहुँच गया होता है। और चंबल की खाई के उस तरफ शिवपुर था और सब बरसाना था। तो जब ये देखते हैं बूढ़ा जो है, सुबह 4 बजे क्या होता है जब समय होता है मंगल आरती का, तो गले में लटकाई हुई मूर्ति जो है उसको निकाल लेता है और पेट पे टांगता है, और पेट पे टांग के राधा रानी की स्नान करके अच्छी तरह से पूजा करता है। जब राधा रानी की पूजा हो रही है सुबह रोड पर, हाँ, पेट पे टांगते हुए, दूर से सैनिक लोग चिल्लाते हैं, ए पुजारी रुक जाओ, श्री जी की मूर्ति लेके भाग रहे हो, रुक जाओ, राजा तुमको ढूंढ रहा है, रुको रुको करके। तो राधा रानी कहती है, पुजारी कहते हैं राजा रानी को, देखो मैंने कहा था ना संकट में पड़ेंगे हम लोग, आप कह रहे हैं कि लेके जाओ लेके जाओ लेके जाओ लेके जाओ बोल रहे हैं, और मैं लेके आया आपको, देखो सैनिक लोग मेरे पीछे पड़े, अभी घोड़े के पीछे मैं कैसे भागूंगा, मैं तो चलने वाला आदमी हूँ, वो घोड़े से बैठ के मुझे कब से पार कर देंगे मुझे वो। तो बोलते कुछ डरना मत, तुरंत मुझे पैक करो, गले में लटकाओ और चलना चालू करो। तो चलूँ कैसे, बोले आगे चंबल की खाई है। बोले कोई डरना नहीं, जैसे मैं बोलते वैसा करते जाओ, सीधा चंबल की खाई में कूद जाना, कुछ नहीं होगा। तो राधा रानी के भरोसे से वो चंबल की खाई में गले में राधा रानी की मूर्ति लटका के कूद जाता है। जैसे कूदता है, जैसे वो था ना कॉटन, कॉटन पर कूदेगा तो कैसा लगेगा, एकदम नरम नरम, वैसा वो कूदता है और इतना सा पानी हो जाता है। और वो आराम से कंबल की खाई को पार करके चला जाता है और सैनिक लोग घोड़े से भाग के आते हैं, रुको पुजारी रुको रुको ऐसे बोल रहा है। तो ये आराम से तो देखते हैं पुजारी कूद रहा है, पुजारी सीधा कूदता है चंबल की खाई के अंदर। उनको बड़ा आश्चर्य होता है और वो देख रहे हैं कि पुजारी जब चल रहा है तो इतना ही पानी है, तो वो भी अपने देखते घोड़े भी चलो चलाएंगे उसके अंदर क्योंकि थोड़ा सा पानी है, लेकिन देखते हैं तो कितना गहरा पानी है। हाँ जब खाली को कूदता है पुजारी तब वो पानी इतना सा हो जाता है, लेकिन जैसे घोड़े सवार आने लगते हैं तो घोड़े सवार एक कूदता है तो डूबने लगता है, तो बाकी घोड़े जो है वो आगे आने के इनकार कर देते हैं, मतलब आप वो चला रहे हैं उसको लेकिन घोड़े आगे जाने का डर रहे हैं तो कुछ नहीं कर सकते। वो सब घोड़े सवार खड़े हैं इस तरफ चंबल की खाई की इस तरफ, आराम से पुजारी जो है चल के चंबल की खाई पार करके श्योपुर की जो बॉर्डर है सीमा उसको पार करके बरसाना क्षेत्र में प्रवेश करता है वो। तब श्योपुर के राजा की जो हद है वो समाप्त हो जाती है, वो आराम से वहाँ से चल के वो बरसाने पहुँचता है। ये सब लोग वापस चले जाते हैं और कहते हैं चमत्कार हो गया। जब हम लोगों ने देखा तो बूढ़े आदमी ने मूर्ति को देख के कूद लगाई चंबल की खाई में, कूद लगाई कितनी गहरी खाई में, लेकिन इतना सा घुटने तक पानी था आराम से चल के पार हो गया। इसलिए हमने सोचा कि हम भी जाएंगे, लेकिन क्या करें इतना गहरा पानी था हमारे घोड़े अंदर जाने को तैयार ही नहीं थे, हम लोग वहीं टिक गए वापस लौट के आए। राजा बड़ा दुखी हो गया, इतना मैंने पहरेदार रखे फिर भी बूढ़ा आदमी हाँ घुड़सवारों के सामने मूर्ति लेके भाग गया और बरसाने तक पहुंच गया। क्यों ऐसा हुआ, जो नहीं होना था, जो अनहोनी थी वो कैसे होनी हो गई, क्योंकि राजा रानी की इच्छा थी इसलिए सब कुछ अनुकूल हो गया। हाँ रात रात में निकल भी गया, उसके पैर में शक्ति भी आ गई, हवा के गति से उड़ते भी चला गया, चंबल की खाई का पानी कम भी हो गया, वो छलांग भी लगाया और पार भी कर गया। वो जब बरसाने में पहुंचता है तो सभी बरसाने के पुजारी लोग जो थे गोस्वामी लोग सब लोगों ने स्वागत करते हैं उनका, बड़ी धूमधाम से राधा रानी को स्वागत करते हैं और विजय लाडली जी को वहाँ से निकाल के बाजू में रखते हैं और उस जगह पर फिर दोबारा राधा रानी को स्थापित कर देते हैं और फिर उनकी पूजा आरंभ हो जाती है। और कितने दिन के बाद में फिर श्योपुर का जो राजा था वो अपने सैनिकों के लेके फिर बरसाने आता है सबको विनती करने के लिए कि हमको राधा रानी का मूर्ति लौटा दो। तो बरसाने के लोग बोलते हैं कि अभी हम आपको ये मूर्ति नहीं देंगे। तो राजा फिर लौट के जाता है बड़ा दुखी होके, क्योंकि वो जानता है कि मेरा राज्य तो नहीं है, यहाँ तो मैं परदेसी हूँ, वहाँ का राजा हूँ, यहाँ पर कुछ नहीं हूँ। कैसा होता है, अस्पताल में हम बड़े अधिकारी हैं, अस्पताल से बाहर से उतर कर रिक्शा में बैठकर ट्रेन में पहुँचते हैं तो कोई हमको पूछता नहीं है अधिकारी है क्या, धक्का मार के चले जाते हैं, कुछ तो बोल सकते नहीं, अरे मैं अस्पताल का अधिकारी हूँ मेरे को अच्छा जगह तो खड़ा रहने के लिए, बाहर खड़ा रहना हवा खाते खाते, तो उसको धक्का मार के अंदर घसीट लेंगे, आपके शर्ट को मुंह पोंछ लेंगे अच्छी तरह से। इसका मतलब क्या, इस दुनिया में अधिकार जो है वो अपनी अपनी जगह पे होता है, सब जगह पर नहीं होता है। इस तरह से ये राजा रानी के मंदिर का इतिहास है, इस मंदिर में राजा रानी के ना होते हुए बहुत बड़ा जंग हुआ था। तो ये छोटी सी कहानी हम आपको बताई। तो हर साल हम लोग वहाँ पर कैंप लगाते हैं और वहाँ के लोग जो हैं बहुत गरीब हैं लेकिन बड़े राधा रानी के भक्त हैं। वो गांव इतना महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि वहाँ के लोग राधा रानी की इच्छा से वहाँ जन्म लेते हैं। नंबर वन, राधा रानी की इच्छा के बिना वहाँ पर कोई उनके घर में जन्म ले सकता नहीं है। और जो राधा रानी को बहुत प्रिय है, उन्होंने पिछले जन्मों में राधा रानी की भक्ति की है, सेवा की है, जो राधा रानी को प्रसन्न कर चुके हैं उनको ही राधा रानी वहाँ पर जन्म देती है। और राधा रानी जिनको चाहती है उनको माया से दूर रखती है। वो मतलब क्या करती है, इस दुनिया में हमको गर्व किस पे होता है, जब हम बड़े धनी बन जाते हैं। हाँ कलयुग में ऐसे कहा गया है कि किसी की योग्यता जो है उसके पास कितना पैसा है इस पे मानी जाती है, वो कितना पढ़ा लिखा है, कितना विद्वान है और कितना अच्छे कुल का है इसको पूछता नहीं है, पैसा रहेगा तो उसको सम्मान मिलता है, ये कलयुग का लक्षण है। तो हमको धन जब मिल जाता है तो बड़ा गर्व होता है, हम अगर अंगूठा छाप भी होंगे लेकिन धन के पावर से हम लोग बहुत गर्व करते हैं। फिर कोई बड़ा बहुत सुंदर होगा, उसका शरीर बहुत अट्रैक्टिव होगा तो गर्व करते हैं, कोई बहुत पढ़ा लिखा होगा तो भी गर्व करते हैं, अरे मेरे पास 10 डिग्री है, मैं इस 4 विद्यापीठों से पढ़कर आ गया हूँ। हाँ और किसका कुल बहुत बड़ा होगा, कोई महात्मा गांधी के घर में जन्म लिया होगा, छत्रपति शिवाजी महाराज के वंश में जन्म लिया होगा, है ना। अभी उदयराजे भोसले, आमदार उदयराजे भोसले, ये शिवाजी का पीढ़ी के लोग हैं, तो बहुत गर्व करते हैं हम शिवाजी के घर से हैं। तो इस तरह से जन्म, ऐश्वर्य, श्रुति और श्री, जन्म जिसका बड़ा है, ऐश्वर्य से जो बड़ा है, और जन्म ऐश्वर्य श्रुति यानी कि जिसको बहुत ज्ञान है, बहुत पढ़ा लिखा है, और श्री यानी कि बहुत धन है। कुंती देवी कहती है कि ये बहुत ज़्यादा गर्व करते हैं, जिनका जन्म बड़ा होता है, ऐश्वर्य बड़ा होता है, ज्ञान बड़ा होता है और धन से भी बड़े होते हैं। लेकिन वो कहती है कि ऐसे लोग मेरी भक्ति नहीं कर सकते हैं, मेरी भक्ति वही कर सकता है जो त्वाम अकिंचन गोचरम, अकिंचन यानी एकदम गरीब, जिस अकिंचन यानी कि सोना, अकिंचन यानी जो इसके पास कोई धन नहीं है, जो जन्म ऐश्वर्य ज्ञान और पैसा होने पर भी गर्व नहीं करता है, वो व्यक्ति मेरा भक्त बन सकता है। या तो उसके पास अच्छा जन्म, अच्छा ज्ञान, अच्छा पैसा और सुंदरता होनी नहीं चाहिए। समझ में आपको आया क्या बात? ये बात बहुत ज़रूरी है। ये कुंती देवी की बात जो है हम सब के लिए बहुत आशा देती है, बहुत आशा और बहुत उत्साह देती है, क्योंकि लोग सोचते हैं कि आपके पास बहुत धन है, आप पढ़े लिखे हैं, घड़े अच्छे घर के हैं, ब्राह्मण कुल में जन्मे हुए हैं, तो आप लोग भक्ति कर सकते हैं। हम लोग क्या भक्ति करेंगे, हम तो गरीब हैं, पढ़े लिखे भी नहीं हैं, सुंदर भी नहीं हैं। लेकिन कुंती देवी जो है पांडवों की माँ है, वो उनकी बात जो है उससे हम लोग को हौसला बनता है, क्योंकि धन दौलत और सुंदर कुल में जन्म लेना और सुंदर शरीर रहना ये भक्ति के लिए बहुत प्रतिकूल है, बहुत गलत माना गया उसको। तो वो कुंती देवी कहती है कि त्वाम अकिंचन गोचरम, तुम्हारी भक्ति और तुम्हारी कृपा उसी व्यक्ति को मिल सकती है जो इस वस्तुओं से मुक्त है। इसलिए राधा रानी अपने धाम में जो लोगों को जन्म देती है वो अक्सर शरीर से बहुत कुरूप होते हैं, कोई इतना सुंदर नहीं होता है, काले होते हैं, इसी तरह से होते हैं, मतलब आकर्षक नहीं होते हैं शरीर से। फिर वो पढ़े लिखे भी नहीं होते हैं, बहुत कम पढ़े लिखे होते हैं, पढ़ते होते तो गीता पढ़ते हैं, भागवत पढ़ते हैं, लेकिन वो कॉलेज जाके पढ़ते नहीं ज़्यादा। फिर धन से भी गरीब रहते हैं, उनके शरीर में बहुत सारे रोग रहते हैं, और राजा रानी जान बुझ के ऐसा रखती है उनको, क्योंकि ऐसा रखने से उनको गर्व नहीं होता है। गर्व करें भी किस पे करें, ना धन है, ना शरीर का सुंदरता है, ना पढ़ाई लिखाई है, ना ऐश्वर्य है, ना कोई बड़ा कुल है उनका, जानबूझ के उनको ऐसा रखती है वो। हम लोग क्या सोचते हैं, अरे बेचारे गरीब लोग हैं, ऐसा लगता है हमको, लेकिन वो गरीब लोग नहीं है। वो कैसे गरीब लोग नहीं है, उनके पास भक्ति का धन है, जो सबसे ऊँचा धन है, जो धन समय के साथ नष्ट नहीं होता है, ऐसा धन उनके पास में है। बाकी पैसा भी होगा, समय के साथ नष्ट हो जाएगा, सुंदर शरीर भी होगा, कुछ समय के बाद में लाइन आ जाएगी शरीर पे, हाँ बाल सफ़ेद हो जाएंगे, सुंदरता गायब हो जाएगी, विद्या भी होगी, बुढ़ापे के बाद में युद्ध याद नहीं रहेगा, जो पढ़ा लिखा है सब भूल जाएंगे, सब विद्या भूल जाएंगे बूढ़ा होने के बाद। मतलब समय के साथ में ये जन्म ऐश्वर्य श्रुति श्री का धन जो है, या ऐश्वर्य जो है, वो सब समाप्त होने वाला है, लेकिन जो भक्ति का धन है वो समाप्त नहीं होता है, वो समय के साथ में नष्ट तो नहीं होता है, लेकिन वो समय के साथ बढ़ते बढ़ते जाता है। क्या मेरा भाई ने कहा है, खर्च न छूटे चोर न लूटे दिन दिन बढ़त जाए। ये उन्होंने कहा कि राम रतन धन है, ये राम का भक्ति का धन, कृष्ण के भक्ति का धन जो है, ये धन कैसा है, ये कोई चोर लूट नहीं सकता है, दरवाजा खुला रख के सो जाओ, इसको कोई लूट नहीं सकता है, इसको खर्च करने से कम नहीं होता है, वो किसी को देने से कम नहीं होता है। मैंने आपको भक्ति का ज्ञान नॉलेज दिया, मेरा नॉलेज बढ़ता है उससे, आपका भी बढ़ेगा मेरा भी बढ़ेगा एक साथ में। हमारे जेब में 10 रुपये होंगे, 5 रुपये आपको देंगे तो मेरे पास 5 बचेंगे, आपके पास 5 रहेंगे, तो खर्च करने से कम हो जाएंगे रुपये, लेकिन ये धन ऐसा है भक्ति का धन जो देने से बढ़ जाता है। तो ये धन जो है, ये कैसे हमने देखा वहाँ पर, हमारे आई कैम्प के अंदर हम लोग रात को राउंड लेते हैं वार्ड में, हाँ देखते हैं सब लोग मरीज स्वस्थ तो है, कोई किसी को कष्ट नहीं है, किसी को सोने में तकलीफ तो नहीं हो रही है, ऐसे जाके एक राउंड लेके आते रात को। तो हम लोग राउंड लेके लेने के लिए एक बार रात को गए थे, बीच रात में 2 बजे गए थे, तो ज़ोर ज़ोर से राधे 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 ऐसा आवाज़ आ रहा था, तो हमको लगा किसी मरीज को दर्द होता रहेगा, इसलिए वो जोर से जोर से राधा राधे पुकारता रहेगा। हम लोग जनरली क्या करते हैं, ओ ओ माँ मतलब क्या, उसको तकलीफ होती रहेगी, इसलिए वो रो रहा है, सो नहीं पा रहा है और भगवान को पुकार रहा है, ऐसा हमको लगा। तो हमने क्या देखा कि जो व्यक्ति, अनेक व्यक्ति थे, एक व्यक्ति नहीं, कई लोग थे ऐसे, राधे राधे जय श्री राधे ऐसे बोल रहे थे, मुंह से बोल रहे, जोर से एकदम स्पष्ट बोल रहे हैं, लेकिन जब पास में गए तो देखा गहरी नींद में सो रहे हैं और गहरी नींद के अंदर राधे राधे जय श्री राधे बोल रहे हैं। आपको लगा होगा सपने में बोलते होंगे, नहीं, जिनकी भक्ति बहुत गहरी होती है वो नींद में भी भगवान की याद करते हैं। दिन और रात में अंतर नहीं होता है, दिन में भी याद करते हैं और नींद में भी याद करते हैं। हम लोग बड़े भक्ति का बात करते हैं लेकिन जब सोते हैं तो हमको बुरे बुरे सपने आते हैं। क्या क्या देखते सपने में हम लोग, कोई शेर पीछे भाग रहा है, कोई कुत्ता काट रहा है, कोई ट्रेन के नीचे मर रहे हैं हम लोग, हाँ ऐसे हमको बड़ा सपना आता है। तो दिन में हम लोग हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, दिन भर भगवान के नाम का याद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे सोते हैं हमारा कंट्रोल अपने ऊपर से खत्म हो जाता है और माया देवी हम पर कंट्रोल करती है और जो उसको सपना देना है वो सपना देती है, जो कभी हमने सोचा भी नहीं था ऐसा भी सपना हमको आता है। ये हमारी भक्ति की कसौटी है, दिन में भक्ति रात में माया। लेकिन ये ऐसे भक्त हैं, दिखने में कुरूप है, धन से गरीब है, विद्या से अंगूठा छाप है, दिखने में सुंदर नहीं है, हाँ ऐसे लोग रात को भी नींद में राधे 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 पुकारते रहते हैं। तो कौन बड़े, हम लोग बड़े हैं, बड़े लेकिन डॉक्टर हैं इसलिए MBBS किया है, हम लोग बड़े कि वो बड़े, हम लोग वहाँ पर डॉक्टर बन के हाई सर्जन बन के वहाँ जाते हैं और सोचते हैं बेचारे गरीब हैं उनका सेवा करना चाहिए, बेचारे गरीब हैं पैसे नहीं हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, हम लोग गरीब हैं और वो अमीर है। कैसे, हम लोग भक्ति से गरीब हैं और भक्ति से वो अमीर हैं बहुत। उनकी नेत्रों की सेवा करके हम उनसे भिक्षा मांगना चाहते हैं, कृपा की भिक्षा, हम लोग वहाँ भिक्षुक बन के जाते हैं कि हम लोग शहर के लोग हैं, हमको कुछ भक्ति भक्ति का ज्ञान नहीं है, हम लोग आपके गांव में आके आप जैसे श्रेष्ठ भक्तों की नेत्रों की सेवा करेंगे तो हमको राधा रानी बहुत कृपा करेगी, तब हमारी भक्ति बढ़ेगी, ऐसी भिक्षुक की भावना बना के हम वहाँ जाते हैं। और वास्तव में आपने कभी देखा है क्या, बॉम्बे में कहीं भी देखा है क्या, ऑपरेशन थिएटर में जाने के पहले पेशेंट लोग नाच कर रहे हैं, देखा कभी आपने? सब टेंशन में रहते हैं, कैसे होगा, क्या होगा, क्या करेंगे, पता नहीं क्या होगा, जिसको ब्लड प्रेशर नहीं उसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। वो दो घंटे के लिए उनका भी बीपी बढ़ जाता है, सब लोग ऑपरेशन थिएटर के अंदर बाहर बहुत टेंशन में रहते हैं। और बरसाना ऐसी जगह है जहाँ हर रोज हर साल हर कैंप के अंदर ऑपरेशन थिएटर के अंदर पूरा ड्रेस वेस पहनने के बाद में सब माताजी लोग नाच करते हैं, रसिया गाते हैं और सब लोग को नचाते हैं और नाचते नाचते ही OT में प्रवेश करते हैं, सो जाते हैं, ऑपरेशन कर लेते हैं, फिर नाचते नाचते बाहर आ जाते हैं। ये सब कैसे होता है? हाँ भक्ति है, ये सब कोई कॉमेडी लोग नहीं है, वो लोग उनका भक्ति में भगवान में इतनी श्रद्धा है। आँख बहुत आपकी बनने वाली नहीं है, बहुत ज़्यादा तकलीफ है आपको, जैसे राधा रानी की इच्छा ऐसे बोलते हैं, जो राधा रानी करेगी वही सही करेगी, इतनी श्रद्धा होती है उनके मन के अंदर, हुआ तो भी अच्छा है नहीं हुआ तो भी अच्छा है। एक व्यक्ति ऑपरेशन में हमारे घरने के बाद में ऑपरेशन भाई बढ़िया हो गया और नेक्स्ट डे वो बुढ़िया मर गई, बहुत बुढ़ी थी वो, बहुत बुढ़ी थी। तो हमको लगा कि अरे हमारे कैंप में डेथ हो गई, तो बॉम्बे में क्या होता है, बॉम्बे में 50 लोग आते हैं आपको मारने के लिए तुरंत, हाँ आपने कुछ किया भी नहीं, कुछ नहीं, डॉक्टर कहाँ है, वो डॉक्टर किधर है, उसको पहला उसका करता हूँ विसर्जन, पहला किधर है वो, ऐसे बात करते हैं, कुछ सोचते नहीं हैं। तो हमने सोचा हमारे कैंप में देहांत हो गया है, हाँ बुढ़िया का, तो हम भी चलेंगे, हम नेता हैं तो हमको जाना पड़ेगा, अभी पीछे कैसे हटेंगे। तो सुबह सुबह हमको उठाया गया, खबर दी गई, तो हम लोग उसकी डेड बॉडी लेके, बहुत सोच रहे थे क्या होगा, अभी गांव वाले पीटेंगे मारेंगे गाली देंगे पता नहीं क्या होगा, सोचते सोचते जा रहे हैं, उस गांव पहुंचते हैं और उसका जो हस्बैंड था वो बूढ़ा था बहुत, वो खबर मिल गई थी उसको ऑलरेडी। तो हम जब गए तो मुझे लग रहा था कि अभी मुझे पहला पीटेंगे क्योंकि मैं कैंप का प्रमुख हूँ, है ना, अरे बुढ़िया को जिंदा ले गए थे, मरा हुआ लेके आए, हाँ क्या किया तुमने, क्या दवा दिया उसको, कैसे डॉक्टर हो, डॉक्टरों के हजाम हो, ऐसा के बोले कुछ भी बोल सकते ना। तो मैं बड़े सहमे सहमे से अंदर जा रहा था तो बुढ़िया आदमी क्या बोलते हैं, आइए डॉक्टर साहब बैठिए, ये इनको चाय पिला दो, उनको बिठाओ, गद्दा लाल दिया, बिठा दिया सरस्वती घाट पे, आओ डॉक्टर साहब आप तो भगवान के आदमी हो, बैठो। वो क्या बोल रहे हैं, जो श्री जी की इच्छा है वही हुआ, श्री जी को उसको घर में बुलाना था तो बुला लिया उसने, उसमें आपका कुछ दोस्त डॉक्टर साहब कुछ दोस्त नहीं आपका, वो आपने जो किया वो अच्छा ही किया। मैंने कल सुना था ऑपरेशन बहुत बढ़िया हो गया था उसका, आँख भी अच्छी बनी थी उसकी, लेकिन उसको आज जाना था तो राजा रानी ने उसको बुला लिया। आप कुछ बुरा मत मानना डॉक्टर साहब, बुरा मत मानना, हमें कोई इतराज़ नहीं है, हम राजा रानी की इच्छा को अपनी इच्छा मानते हैं और चलते हैं। मैं हैरान हो गया पूरा, हाँ एकदम हैरान हो गया मैं। सोचो आप, ऐसा केवल ऐसे धाम में ही हो सकता है। शहर में जो पढ़े लिखे लोग हैं, MBBS किए हुए, MD किए हुए और MBA किए हुए, इंजीनियर बने हुए हैं, वही लोग 50 लोग इकट्ठा होकर डॉक्टर को मारने का प्रयास करते हैं। तूने क्या दिया उसको, पहला बोल डॉक्टर है कि क्या है तू, तेरा डिग्री दिखा पहले, ऐसे बात करते हैं। तो पढ़ाई लिखाई से आदमी को अकल नहीं आती है, अकल जो आती है दिमाग शांत रहता है वो भजन से और भक्ति से होता है। तो ये लोग इतने अनपढ़ दिखाई पड़ते हैं, किसान लोग हैं, बहुत गरीब लोग हैं, और उनको कोई लगता है कि एकदम बैकवर्ड बोलते हैं हम लोग शहर के लोग, बड़े गर्व से उनको बैकवर्ड बोलते हैं, वैसे लोग हैं ये लोग, लेकिन उनके अंदर कितनी मैच्योरिटी है। वो मुझे, मैं इतना सा सॉरी बोल रहा था कि आपकी बुढ़िया जिंदा आई थी और मुर्दा लेके वापस आया आपके पास में, मैं बहुत हाथ जोड़ के उनको माफ़ी मांग रहा था और मुझे वो सांत्वना दे रहे थे, डर रहा मैं डॉक्टर साहब कुछ नहीं होना, वो तो उनकी इच्छा है, श्री जी की इच्छा थी। इतनी श्रेष्ठ भावना अगर किसके पास है तो वो इतनी अमीर है, और हमारे पास नहीं तो हम गरीब है। इसलिए हम लोग जब दानी व्यक्ति के पास जाके पैसा मांगते हैं तो बोलते हैं कि गांव में मेडिकल सुविधा नहीं है, गांव में कुछ दवाखाना नहीं है, इसलिए हम लोग वहाँ कैंप करते हैं। लेकिन हृदय में हमारे क्या बात होती है और हमेशा रहती है कि हम लोग वहाँ पर कृपा की याचना करने को जाते हैं, कृपा चाहिए हमको, इसलिए वहाँ पर जाते हैं हम लोग। वो जो गरीब दिखते हैं उनके चरणों को हम लोग वंदन करते हैं, हमारे गुरु महाराज भी आते हैं तो उनको जूता पहनाते हैं उनके के पैर में, हर एक विजवासी के पैर को हाथ लगा कर दंडवत करते हैं हमारे गुरुदेव, और वो ऑपरेशन में जाके उनका, वो क्या बताते हैं कि ये जो गरीब दिखने वाले लोग हैं ना, ब्रजवासी लोग बरसाने के, ये स्वयं राधा कृष्ण के स्वरूप हैं, इनके अंदर ही राधा कृष्ण हैं, उनको सेवा करना, और जब वो सेवा करके प्रसन्न हो जाएंगे, आपको देख के प्रसन्न होकर हंसेंगे, इसका मतलब समझना कि राधा और कृष्ण प्रसन्न होकर आपके सामने हंस रहे हैं, प्रसन्न होकर स्मित हास्य कर रहे हैं, ऐसे लोग हैं ये। तो इन लोगों की कृपा प्राप्त करने के लिए इतना बड़ा कैंप हम लोग लगाते हैं। ऐसा नहीं है कि अरे बेचारे गरीब हैं तो हमको जाके कुछ करना चाहिए, ये भाव से गए तो ये भी अहंकार की भावना है। इस भाव से वहां जाना चाहिए। आप लोग में से कितने लोग कैंप में जाएंगे, अभी कोई जाएंगे इस साल? हाँ, इसी भाव से जाना कि हम लोग गरीब हैं और वो अमीर है भक्ति में, राधा कृष्ण की कृपा को प्राप्त कर चुके हैं, हाँ उनकी सेवा करना हमारा जरूरत है, अपनी जरूरत से हम लोग वहाँ जा रहे हैं, हम लोग ने अनाउंसमेंट किया है इसलिए वो आ रहे हैं, वो हमारे मेहमान हैं क्योंकि हमने अनाउंसमेंट करके उनको बुलाया, आ जाओ, हमने दुकान खोल के बैठे हैं हम लोग, आ जाओ। तो बड़े आदर से उनका सत्कार करेंगे, कोई हम पर चिल्लाएंगे तो भी हम लोग उनको स्वीकार करेंगे क्योंकि हमारे मेहमान हैं वो, उनकी सेवा करेंगे, उनको रोटी खिलाएंगे, उनको लैट्रिन टॉयलेट लेके जाएंगे, मुंह धुलवाएंगे, उनका ऑपरेशन करेंगे, दवाई देंगे, उनको प्रेम से उनको फोटो देंगे, राधा कृष्ण का प्रसाद देंगे, कंबल देंगे, सॉक्स पहनाएंगे अपने हाथों से, और विदा करेंगे उनको बड़े प्रेम से, वो भी सबको आशीर्वाद देते हुए विदा हो जाएंगे, सबको गले लगा लगा के प्रेम से, बेटा तुम राजा बनो, बेटा तुम्हें लड़का हो जाए, बेटा तुम बड़े माला माल हो जाओ, बेटा तुम बड़े, ऐसे भर भर के आशीर्वाद देंगे, आपको भला हो जाए, राधा कृष्ण आपकी खूब भक्ति बढ़ाएं। हाँ, मुंबई में ऐसे लोग आशीर्वाद देते हैं कभी? गाली बहुत प्रेम से देते हैं, तुरंत मुंह में गाली तैयार रहती है, कोई अच्छा किया तो अच्छे शब्द निकलते नहीं है मुंह से, है ना? अधिकतर क्या है, गाली बकना जल्दी हो जाता है, लेकिन आशीर्वाद थैंक यू बहुत जल्दी निकलता नहीं है बॉम्बे में, वहाँ पर बिल्कुल उल्टा है। जो भी आप करेंगे उसको धन्यवाद देते रहेंगे, बार बार लोग धन्यवाद देते, थैंक यू बोलेंगे, धन्यवाद बेटा बहुत अच्छा हो, बेटा हमारे घर में भी सेवा नहीं हो सकती ऐसे आपने की है, हम आपके बहुत धन्यवाद देते हैं, राधा रानी खूब प्रेम बढ़ाए आपका, खूब बार बार बुलाएं बरसाने में, हाँ ब्रज का वास आपको मिलते रहे, ऐसा आशीर्वाद देते हैं। और इतना आशीर्वाद एक होलसेल में जब मिलता है ना तो हमारे लोग वहाँ जाकर रोते हैं, उनको कहाँ हैबिट है इतनी, एक साथ में होलसेल में दिन भर कोई आशीर्वाद देता रहेगा तो इतना सहन नहीं होता है हमको। आदत है ना उसको, आदत किसकी है, गाली खाने की, लोगों से झगड़ा करने की आदत है। तो वहाँ जाके इतना प्रेम से कोई धन्यवाद देगा तो थोड़ा सा लगता है कल्चरल शॉक हो जाता है थोड़ा सा। तो खुशी से रोते हैं लोग जो वार्ड में काम करते हैं, जो डिस्चार्ज करते हैं ना, तो बहुत खुशी से रोते हैं, इतना आशीर्वाद देते हैं, हम बार बार आएंगे, बोलते हर साल की काम करेंगे यहाँ पर, क्योंकि जब कोई हम लोग इतनी सेवा करेंगे तो इतना आशीर्वाद देंगे तो हमको अच्छा लगेगा ना उनका देख के। तो ये सब रहस्य की बातें हैं और ये जाके देखना चाहिए वहाँ पर। अगर आप भक्ति विधान से जुड़ गए हो तो वहाँ जाने का आपको इच्छा करना चाहिए कि वहाँ पर क्या चीज़ है, कैसे लोग रहते हैं वहाँ पर, कैसे रहते हैं और क्या भजन करते हैं, कितना श्रद्धा है उनके ऊपर, कितनी भक्ति है, कितना प्रेम है उनके अंदर। आप किसी भी घर में जाएंगे वहाँ पर, कभी भी जाओ आप, एकदम झोपड़ी गरीब की रहेगी, आप जाएंगे मैया भूख लग रही है रोटी खिलाओ, तुरंत रोटी बनाई गई और तुरंत आपको खिलाएगी, घर में कुछ नहीं होगा, तुरंत मटका खोलेगी छाछ पिलाएगी आपको। अरे हमने जाकर वहाँ पर भिक्षा किया है, घर घर में जाके भिक्षा मांगी है और हमको फटाफट रोटी बना के दिया है उन्होंने, रोटी सब्जी अचार तुरंत निकाल के दिया है। एक बार तो एक माँ अपने बेटे बच्चे को लेकर स्कूल जा रही थी और उसने बच्चे के लिए टिफिन बनवाया था। हाँ, हमारे डॉक्टर ने जो है, डॉक्टर नीला बागले, वो उसे गुजर रही थी यहाँ से, वो वहाँ से आ रही थी, तो उसने क्या किया, टिफिन का डब्बा जो है बेटे का डॉक्टर ने को दे दिया। तो डॉक्टर ने कहा, अरे ये तो बेटे का डिब्बा है, स्कूल में क्या खाएगा। अरे कोई बात नहीं बेटा, और बन जाएगी, आप तो कभी कभी आते हो, आपको कहाँ मिलेगी ब्रज की रोटी। बच्चे का टिफिन निकाल के दिया उसको हाथ में, बच्चे को स्कूल पहुँचा के फिर दोबारा रोटी बनाया और बच्चे को लेके गई स्कूल में। इतना बड़ा दिल जो बॉम्बे में किसी को नहीं मिलेगा आपके पास, कोई में नहीं मिलेगा। हाँ, आदमी ना धन से अमीर होने से बदले में हृदय से अमीर होना चाहिए, फिर राधा रानी और कृष्ण भगवान सब देते हैं उसको। इतना बड़ा त्याग कोई नहीं कर सकता है, अपने बेटे का टिफिन निकाल के किसी मेहमान को दे सकता है, और आप भी उसको बुरा नहीं मानेंगे, क्या बड़ी बात है, बच्चे का टिफिन है, कौन मांगेगा उसको। लेकिन बच्चे का टिफिन निकाल के आपको दे रहे हैं क्योंकि आप बाहर से आए हो, आपको जरूरत है उसकी कृपा की, ब्रज की रोटी की आपको आपको मिलना चाहिए, वो ऐसा धाम है वो, वहाँ जाके आपको अनुभव करना चाहिए कैसे अच्छे लोग होते हैं। हाँ, और आपके घर में कोई आएगा और नॉक करेगा तो पहला आप ऐसा देखेंगे कौन हो तुम, क्यों आए हो, फिर वो बोलेगा कि साहब पानी चाहिए, तो उसको आप देखेंगे ऊपर से कौन आया है, कहाँ से आए, कहाँ से आए हो, तो बोलेगा नीचे मैं काम करता हूँ, मैं जरा भिखारी काम करने के लिए आया था, प्यास लग रही है। इतना सवाल पूछते हैं पानी देने के लिए भी, ऊपर से बोलेगा भूख लग रही रोटी खिलाओ, तो बोले नहीं नहीं चले जाओ अगले दरवाजे जाओ। ये मुंबई का रिवाज है, जिसे को रास्ते पे हम लोग खड़ा नहीं करते, दरवाजे पर तुरंत भगा देते हैं। बोलेगा साहब मैं चोर नहीं हूँ, मैं मुझे भूख लग रही है, मुझे खाना खिलाना है, पैसा नहीं है, भूख लग रही है, तो निकल जाओ यहाँ से, दरवाज़ा बंद कर देते हैं। और वहाँ पर हम जैसे शहरी लोग चश्मा पहन के जाते हैं, बोलते मैया भूख लग रही है रोटी खिलाओ, तुरंत जाकर रोटी बना कर खिला देते हैं। मैंने कई बार इसका अनुभव किया, उसमें बड़ा आनंद आता है। हाँ, अपने आप को भूल कर गरीब ब्रजवासी मैया की झोपड़ी में जाकर भीख मांगना और उसके हाथ की गर्म गर्म रोटी खाना, इसका बड़ा आनंद क्या है। अब उसको 50 रुपये दो, 100 रुपये दो, 500 रुपये दो, फिर भी वो जो आनंद है उसको आप तोल नहीं सकते हो। हाँ, ऐसे ही हम लोग गए थे एक बार उधर सूर्य कुंड के पास, वहाँ पर कथा चल रही थी, तो हम घूमते घूमते कथा का स्पीकर कान में लगा लगाते एक झोपड़ी में घुस गए, वहाँ पर एक छोटी सी लड़की और उसकी माता रोटी बना रही थी। हमने कहा मैया रोटी खिलाओगे, भूख लग रही है। अरे बेटा बैठ जाओ बैठ जाओ। तो बच्ची गोली बना रही है और मैया सेक रही है और गर्मा गर्म 1 2 3 4 चल रहा है, कान में से प्रवचन सुन रहे हैं और रोटी खाते जा रहे हैं, पेट भर गया। बोले मैया चलूँ, दोबारा आना बेटा दोबारा आना, हर बार आना और रोटी खाना। मैया पैसे ले, अरे कैसे पैसे की बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो, रोटी को थोड़े पैसे होते हैं, ऐसे कहा। और जब हम वहाँ से निकले, 5,000 भक्त जो है वहाँ से निकले, हम लोग कथा वथा करके वापस निकले, तो जगह जगह पर गाँव वालों ने छाछ के स्टॉल लगाए, घर से मटके लेकर छाछ रस्ते पर लाया और सबको फ्री में छाछ पिलाया। कितने लोगों को, 5,000 लोगों को छाछ पिलाया। कई जगह पर लोगों ने लाइन से मटके लगाए अपने घर से लाकर और सबको छाछ पिलाया। ऐसा सारा अनुभव जो होता है ना, बॉम्बे में नहीं मिलेगा आपको। ऐसा प्रेम का अनुभव के लिए आपको जाना पड़ेगा भगवान के धाम में, जहाँ भगवान के भक्त रहते हैं। इसलिए वह राधा रानी जो है बड़ी दयालु हैं, जो अपने लोगों को अपने पास रखती है, ऐसे रखती है, गरीब रखती है, ताकि उनको गर्व न हो जाए, अहंकार न हो जाए, क्योंकि धन आने से तुरंत अहंकार बढ़ जाता है। धन नहीं होने से आदमी बहुत दिलदार रहता है। देखो आप कभी भी गरीब के घर में जाओगे आपका घर का सब लुटा देंगे आपके ऊपर, अमीर के घर पर जाओगे तो देखेंगे पेपर क्यों लिया हमारा, तो मैगजीन क्यों लिया, तो जगह पर रखो, हाँ तुरंत देखते कौन सा क्या लेके जा रहे हो, नहीं लेके जाने का यहाँ रखो उसको, वो फ्लावर पॉट क्यों हाथ लगाया आपने, जितना अमीर होगा उतना ज़्यादा अकड़ेगा, गरीब आदमी रहेगा तो क्या करेगा, कोई बात नहीं सब आपका ही घर है, आ जाओ सो जाओ रोटी खाओ, क्या चाहिए आपको, टेंडी का अचार चाहिए, नींबू का चाहिए ले लो, बाजरे की रोटी चाहिए, मक्खन चाहिए निकाल के दे देंगे खिला देंगे आपको। प्रेम ही सबसे बड़ा धन है, याद रखना इस बात का। और ये प्रेम का धन क्या है ये समझने के लिए आपको बरसाने जाना पड़ेगा, वृंदावन में जाना पड़ेगा, फिर वहाँ के सच्चे ब्रजवासियों को आप मिलेंगे तो आपके इस प्रेम के धन का परिचय होगा, समझेंगे आप ये क्या धन होता क्या है, जो हाथ के कागज में नहीं गिनते उसको हम लोग हृदय के नाप से गिनते हैं उसको, और हृदय में उसका अनुभव मिलता है। ऐसा धन का अनुभव करने के लिए हम जाते हैं वहाँ पर, और जाने के समय गरीब बन के जाना ये समझ के मत जाना कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं धनी हूँ, मैं फॉरेनर हूँ, मेरे पास बिजनेस है बहुत बड़ा, और मैं बहुत सुंदर हूँ, बहुत बड़ी डिग्री है मेरे पास, ये सब टोपियाँ निकाल के जाना यहाँ से, और एक सिंपल व्यक्ति बन के वहाँ पहुँचना। हाँ चलो डॉक्टर भी हम लोग होंगे, ऑपरेशन भी करते होंगे, लेकिन वो गर्व लेके मत जाना वहाँ पर कि मैं कुछ बड़ा आदमी हूँ और ये सब क्या कहते हैं उसको गंवार लोग हैं गांव के अनपढ़ लोग, ऐसा मत जाना, सेवा करने के लिए जाना उनकी, क्योंकि राजा रानी के गोद में बैठे हुए लोग हैं वो, भगवान के गोद में बैठे हुए हैं। हाँ हम लोग शहर के गोद में बैठे हुए हैं, जो शहर हमको डुबाएगा उसके गोद में हम लोग बैठे हैं, डूबने वाले शहर में वो राजा रानी के गोद में बैठे हुए। इसलिए आज मैंने आपको बरसाने की कहानी बताई। हाँ श्री बरसाना धाम की जय हो। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।